ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। यत्र देव पतय स्वे स्वे गणनायकै विहित महार्हण सर्व ऋतु कुसुम स्तवक फल किशलय श्रिया अनाम्यमान बिटपहलता बिटपीभि उपशुंभमान रुचिर कानन आश्रम आयतन वर्ष गिरी द्रोणा द्रोणीषु तथा च अमल जल आशयेषु विकच विविध नव वनरूह आमोद मुदित राजहंस जल कुक्कुट कारंडव सारस चक्रवाक आदि भी मधुकर निकर आकृति भी उपकुजितेषु जल क्रीडाधि भी विचित्र विनोदयी सुललित सुर सुंदरीनाम काम कलिल विलास हास लीला अवलोक आकृष्ट मन दृष्टय स्वेरम विहरती।
बहुत बड़ा पद्य रूप में अपने एक गद्य रूप में है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा है। इन भूखंड में से प्रत्येक में रीतियों के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम है। इन भूखंड की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्प के सुगंधि से हंस बतख जल मुर्गियाँ तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौर के मोहक गुंजन से वायु पूरित रहती है। इन भूखंड के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक है। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास परिहास करती है और उन्हें कामेच्छाओं से पूर्ण बांकी चितवन से देखती है। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियां पर उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार आठ स्वर्गीय वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। तात्पर्य यहाँ पर निम्नस्थ स्वर्गलोकों का वर्णन हुआ है। इन लोगों के वासी मोहक वातावरण में जीवन उपभोग करते हैं, जहाँ स्वच्छ सरोवर नए उगे कमल पुष्पों से और उद्यान नाना प्रकार के फल फूलों से पक्षियों तथा गुंजार करते भयरों से भरे रहते हैं। ऐसा वातावरण में वे अपनी अत्यंत सुंदर एवं कामासक्त पत्नियों के साथ आनंद मग्न रहते हैं, तो भी वे सब भगवान के भक्त होते हैं। जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है कि इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्गिक सुखभोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु उनमें जैसे तैसे कामसुख तथा जैसे कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति हो जाती है तो वे भगवान की सेवा सर्वथा भूल जाते हैं। किंतु स्वर्ग के उच्चतर के इंद्रिय सुख का भोग करते हुए भी वहाँ के वासी यह कभी नहीं भूलते हैं कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। तो पहले से आप श्रवण करके आ रहे हैं कि ओके, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले से इस अध्याय में विशेष रूप में गंगा अवतरण की व्याख्या की गई है। सुखदेव गोस्वामी गंगा जी किस प्रकार प्रकट हुई और किस प्रकार इस धरा पर अन्य बात गंगा को कहते कि ये त्रिपुर गामिन स्वर्ग मर्त्य पाताल सर्वत्र ही बहती है। कौन? गंगा जी। इसलिए पहले इसकी वर्णन की गई है किस प्रकार मुख्य रूप में चार धारा में गंगा निकली, क्योंकि पहले तो गंगा कहाँ से प्रकट हुई, कैसे गंगा का प्रकट हुआ, आप पहले से श्रवण करके आ रहे हैं। बोलो। भगवान बामन देव जब बलि महाराज को तीन पग जमीन मांगे और बलि महाराज उसके लिए सत्य कर लिए, अपने गुरु की वचन को भी टाल कर, किसकी वचन को टाले, शुक्राचार्य के वचन को टाले। शुक्राचार्य मना कर रहा था कि दान मत दो इसको, ये बावना बन के आया है लेकिन ये है स्वयं विष्णु, और छोटा छोटा तीन पग देखकर पैर दिखाकर मांग रहा है तीन पग, लेकिन त्रिविक्रम रूप धारण करके सब कुछ ले लेगा, इसको देना नहीं कुछ, मना कर दो इसको नहीं देने का। लेकिन बलि महाराज ने इसको माने नहीं, क्योंकि बलि महाराज ने कही कि गुरु जी आपने ही हमें सिखाया, कि जितने भी आप मेरे से इतने यज्ञ तप आप कराए हैं, सारे यज्ञ तपस्या के एकमात्र भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु। और सब कुछ यज्ञ तपस्या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है। और आप ये कह रहे कि ये स्वयं मैं तो पहचाना नहीं इनको, ये से बावने रूप में आए हैं, लेकिन आप ही कह रहे कि स्वयं कौन है? स्वयं विष्णु है। और फिर आप ही करेंगे इसको मत दो, जब सारे यज्ञ तपस्या की भोक्ता वही स्वयं है और मेरे दरबार में आ गए भिखारी बनकर, भीख मांगने आए हैं, है? ब्राह्मण भिक्षु बनकर आकर, ब्रह्मचारी भिक्षु बनकर आए, और फिर आप करेंगे नहीं इनको नहीं देना, ये तो शास्त्र उचित उपदेश नहीं है, शास्त्र के द्वारा सम्मत उपदेश नहीं है, इसलिए मुझे माफ करना गुरुदेव, मैं आपकी ये आदेश को पालन करने के लिए तैयार नहीं हूं। हैं? गुरु को शिष्य तभी त्याग देगा जब गुरु कहेगा कि तुम्हारा जो धन है भगवान के सिवाय मत लगाओ, सो मुझे दे दो, हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगाने के लिए मांग रहा है, कहता कि नहीं भगवान की सेवा में नहीं, मेरा सेवा में। तो फिर बड़ी महाराज देखे कि शुक्राचार्य तो ऐसा ही गुरु है, आज जो सोच रहा है कि शिष्य का धन में मैं प्रतिपालित हो रहा हूँ, परिपोषण मेरा परिपोषण हो रहा है, और शिष्य यदि गरीब मैंने सो भिखारी बन जाएगा तो मुझे भी कहीं पे रास्ते में घूमना पड़ेगा, है? लेकिन बड़ी महाराज ने कहे कि नहीं, सभी भगवान का है, आप ही मुझे सिखाया और भगवान जो मांग रहे तो मैं इनको सब दूंगा, जो मांग रहे हैं मैं सत्य वचन किया हूँ, ये ब्राह्मण को मैं ठगूंगा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। माता पृथ्वी सब कुछ सहन कर लेती है लेकिन एक बात को नहीं सहन करती, किसको? हैं? सभी की बोझा को उठा लेती है, इतनी बड़े बड़े विशाल पर्वत पहाड़ों की बोझा को भी धरती उठाती मैंने धारण कर लेती है, लेकिन एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति का बोझा को नहीं धारण कर पाएगी। हैं? झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ब्राह्मण को वचन दिया हूं अवश्य मैं वचन पालन करूंगा, मेरा सत्य रक्षा करूंगा। तो बात में तो सब प्रसंग सुने हैं कि लेकिन शुक्राचार्य ने जब बड़ी महाराज ने सत्य करने के लिए संकल्प करने जा रहे थे तो बड़ी महाराज ने अभिशाप दे दिए, कहे कि मेरे बात को अस्वीकार करके तू मनमानी से करने जा रहा है, तेरे सर्वस्व ही लूट जाएगा। तो बोले ये तो पहले तो ही आप ही बता रहे जाएगा, ऐसे भगवान लेंगे सब कुछ, अरे इसमें बड़ा बात क्या है? अभिशाप देने के बाद भी शुक्राचार्य फिर भी शांत नहीं हुए, फिर भी सोचे क्या कि जब ये सब बड़ी महाराज ने संकल्प करने के लिए जा रहे थे तो कमंडलों के छिद्र में मक्खी बनकर बैठ गए, कमंडलों के छिद्र में बैठ गए, जैसे पानी गिरेगा ना संकल्प करेगा ना दान देगा, मुख्य कमंडल होता ना तो कमंडल में से थोड़ा छिद्र अलग टाइप का रहता ना, नाड़ जैसे लगा के फिर पानी गिरता है, तो उसके अंदर बैठ के पास मक्खी बनकर, अब बोले महाराज पानी लेने के लिए जितनी प्रयास करने पर भी पानी हाथ में नहीं गिर रहा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, पानी किसी गिरता नहीं है। तो उन्होंने बामन देव को पता था इसका रहस्य क्या है, तो भगवान सब जानते हैं, बावने के वेश में बैठे हुए थे कमंडल ब्रह्मचारी वेश में, उनका सा कुशग्रास भी था उसमें, कुशग्रास से एक टुकड़ा निकले, एक खंड निकाल कर खींच दिए कमंडल छिद्र, आज मक्खी बनकर बैठे थे, एक आंख क्या हो गया, फूट गया है, एक तुरंत भाग के फिर भागे उसके अंदर मक्खी बनी बाहर आए, तब से शुक्राचार्य की एक ही आंख है, बाद में उन्हें भगवान से माफी मांग लिया, बड़ा प्रसंग वो प्रसंग यहाँ पर हम चर्चा नहीं करते, लेकिन बड़ी महाराज संकल्प कर लिए और जैसे ही शुक्राचार्य कहे थे ऐसा ही उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया, एक पैर में तो स्वर्ग को है ले लिए, मर्त्य को ले लिए, विशाल शरीर को विस्तार करके पूरे आकाश में छा गए, कहे कि बोली कहाँ है तीसरे पैर, तीसरे पैर कहाँ रखू मैं, बोली महाराज आपके तीसरे पैर है नहीं, भगवान फिर नाभि से निकले एक पैर है, बोले देख और एक पैर है कहाँ रखो, वो तो बड़ी महाराज के सिर में रखकर इनको सूत्र लोक में भेजे, लेकिन इसकी ये जो एक पैर जो उन्होंने ऊर्ध्व को बढ़ाया है वो इस जो भौतिक जगत की परिसीमा को इसको पूरे विदीर्ण करके ही कर्णार्णव सागर में इनके बाया पैर के अंगूठा बाया है बाया पैर के अंगूठा से प्रवेश कर गया। तो उससे भगवान के चरण कमल को प्रक्षालन करते हुए कारण सागर के जल नीचे गिरने लगा। तो वहीं से गंगा फिर भगवान के चरण को प्रक्षालन करते हुए वो जो पानी गिरी है तो वही गंगा के रूप में जैसे यहाँ पर वर्णन की गई गंगा अवतरण के वर्णन के अन्य अन्य पुराण में थोड़ा सा भिन्नता इधर उधर दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जैसे वर्णन की गई है इसी अध्याय में तो उसकी वर्णन इसी प्रकार हुई है कि गंगा नदी के उद्गम भगवान बामन ने दो ही पग में तीनों लोगों को माप कर अपने बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के अवतरण को भेद डाला। इस छिद्र के कारण समुद्र के जल की कुछ बूंदे बाहर निकलकर भगवान शंकर के सिर पर पड़ी, जहां पर वे 1000 युगों तक पड़ी रही हैं ब्रह्मा जी के सिर में। सॉरी, भगवान शंकर के सिर पर पड़ी जहां पर वे 1000 युगों तक पड़ी रही। यही बूंदे पवित्र गंगा नदी है। यह पहले स्वर्गलोक में बहती है जो भगवान विष्णु के चरण तल में स्थित है। गंगा नदी भागीरथी तथा जाह्नवी आदि कई नाम से विख्यात है। यह ध्रुवलोक तथा सप्तर्षि लोक की पवित्र करने वाली है, क्योंकि ध्रुव तथा सप्तर्षियों की एकमात्र अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करना। भगवान विष्णु के चरण कमल से निर्गत गंगा नदी स्वर्गलोक को विशेष रूप से चंद्रमा को आप्लावित करती हुई मेरु पर्वत के ऊपर बसी ब्रह्मपुरी से होकर आगे बहती है। यहाँ पर यह चार धाराओं सीता, अलकानंदा, चक्षु तथा भद्रा में विभाजित होकर लवण सागर की ओर बहती है। इनमें से सीता नामक धारा शिखर पर्वत तथा गंधमार्दन पर्वत से होकर बहती है और फिर भद्राक्ष वर्ष तक प्रवाहित होकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। चक्षु धारा माल्यवान गिरी के होकर प्रवाहित होते हुए केतुमाल पर्वत में पहुंचकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। भद्रा कुरुदेश पहुंचने के पूर्व मेरु बा कुमुद नील श्वेत तथा सिंहवान पर्वत के पार करके तब उत्तर दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। अलकानंदा ब्रह्मालय से बहती हुई अनेक पर्वत की जिनमें हेमकूट तथा हिमकूट भी सम्मिलित है को भी लांघ करके भारतवर्ष में पहुंचती है, जहां यह लवण सागर के दक्षिण की ओर बहती है। अनेक नदियां तथा उनकी शाखाओं 9 वर्ष से होकर बहती है। भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र है तथा अन्य 8 वर्ष उन पुरुषों के निमित्त है जो स्वर्गिक आनंद उठाना चाहते हैं। इन 8 सुंदर वर्षों में स्वर्गिक प्राणी विभिन्न स्तर के भौतिक सुख और आनंद का उपभोग करते हैं। श्री भगवान भिन्न अवतार लेकर जम्बूद्वीप के इन 9 वर्षों में अपने दया का वितरण करते हैं। पर जो यहाँ जम्बूद्वीप की वर्णन होती है इसमें 9 वर्ष हैं। इस 9 वर्षों में से 1 वर्ष है भारतवर्ष, लेकिन भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा गया है। भारतवर्ष नामक जो भूभाग है ये कर्म क्षेत्र है, इसकी वर्णन आगे जाएगी। लेकिन पहले ये जो भारतवर्ष को छोड़कर और जो 8 वर्ष है उनकी विशेषता यहाँ पर वर्णन की जा रही है। ये इनको कहते कि भू स्वर्ग, भाई ये स्वर्गलोक ही है। भारत भूमि जो है ये इसको कहते कर्म क्षेत्र, इसको मर्त्यलोक भी कहते हैं। ये कर्म के यहाँ पर कर्म करके ही आप अपने फल को फल के अनुजाई उपभोग करोगे और नर्क में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे बार नर्क में जाओगे, उसका आपका हाथ में है। ये एक जंक्शन की तरफ है, यहीं से आप कहीं जा पाओगे। जैसे कोई कहीं जाना चाहते हो तो एक रेलवे स्टेशन में एक जंक्शन होता ना, जंक्शन में पहुंच के फिर आप वहां से बॉम्बे जाओ व कलकत्ता जाओ व कहीं भी जाओगे वहां से जा सकते हो, वो जंक्शन से ट्रेन आपको मिल जाता है। ये भारतवर्ष इस प्रकार है, ये कर्मभूमि में है जो चाहे उच्च उच्च लोक के भी जो लोक रहते हैं वो भी खिणे पुरने मर्त्य लोकं विसंति, मर्त्य लोक में आते हैं। व कुछ लोग शुरू से यही यहीं पर जन्म लेकर यहीं पर कर्म करते हैं भारतवर्ष में। यहीं जैसे कर्म करोगे कर्म के आधार पर आपको गति प्राप्त हो जाती है। आप यहीं पर भारत भूमि में मर्त्य लोक में यहीं पर आप कर्म करके ही स्वर्ग में जा सकते हो। यहीं पर कर्म करके कहाँ जा सकते हैं, भक्त हमने भगवान के धाम में जा सकते हैं, और यहीं पर इसे भी कहाँ जा सकते हैं, जमलोक को भी जा सकते हो, यहीं से नर्क में भी जा सकते हैं, सूत्र पाताल तलातल आदि नीचे निम्न लोक में कहीं भी जहाँ जाना चाहते हैं वहीं से ट्रेन मिल जाएगा। अब जैसे जैसे टिकट खरीदोगे ऐसा ही जगह भेज दिया जाएगा है? तो आप जैसे यहीं पर भारत भूमि रहकर कोई भक्ति करेगा तो कहाँ जाएगा, भक्ति करने से यहीं से भगवान की भक्ति करेगा तो वैकुंठ जगत में है, गोलोक वृंदावन तक चले जाएगा। और यहीं पर रहकर जो पाप कर्म करेगा तो फिर जमराज उसके लिए बैठे हैं है? शासन का फिर आपको निचले निम्न जोनी में निम्न अंक में भेज देगा। यहीं पर यदि पुण्य कर्म करोगे तो फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। ऐसे ही तरह इसलिए इसको कर्म क्षेत्र कहा गया। ये कहते कि ये 9 वर्ष जो जम्बूद्वीप की वर्णन की गई है, 9 वर्ष में से भारत वर्ष जो है ये विशेष रूप में कर्म क्षेत्र है, और अन्य जो 8 वर्ष है ये उन पुरुषों के लिए है जो स्वर्गीय के आनंद उठाना चाहते हैं। इनको इसलिए भूस्वर्ग कहते हैं है? भूस्वर्ग नहीं, सॉरी भूस्वर्ग तो हमें यहाँ पर कल्पित करते, लेकिन इनको ये 8 लोग विशेष रूप में इनको स्वर्ग जैसे स्वर्गीय सुख यहाँ के निवासियों को प्राप्त होता है। ये 8 सुंदर वर्ष में स्वर्गीय प्राणी विभिन्न स्तर के भौतिक सुख और आनंद अनुभव करते हैं। तो उसी 8 लोकों में से 12 में आज के श्लोक भी विशेष रूप में वर्णन की जा रही है। भारतवर्ष की वर्णन नहीं हो रहा, इसे जो जम्बूद्वीप के जो अन्य 8 वर्ष जहाँ पर कि निवासी स्वर्ग सुख को अनुभव करते हैं, ये 8 लोक में है। इन भूखंड में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम में है। इन भूखंड की सीमा बताने वाले विशाल पर्वत की बीच निर्मल जल के पूरित विशाल सरोवर है, जिसमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्प की सुगंधी से हंस बतख जल मुर्गियाँ तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं। भौरों के मोहक गुंजन से वायु पुरित रहते हैं। इन भूखंड के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक हैं। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवर के तटवर्ती उद्यान में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के हास परिहास करते हैं और उन्हें कामेच्छा से पूर्ण बांग के चितवन से देखती हैं। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियां पर अनेक सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्गीय वर्ष के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। स्वर्ग में जाना चाहते हैं है? कभी काम कहते हैं भूस्वर्ग कहना, किसको भूस्वर्ग कहते हैं, हरे कृष्ण है? इसी पृथ्वी पर भी कोई कई जो कई अम्मा भी कहते कि स्वर्ग ने धरा को स्वर्ग बनाएंगे, कई लोग गीत गाते हैं। भाई यहाँ पर भी हम कहते नहीं भू वैकुंठ भू स्वर्ग, ऐसा ही शब्द आप सुने भू स्वर्ग भू वैकुंठ ऐसे शब्द से उपयोग की जाती है भू नहीं बोलता नहीं कहाँ पर भू वैकुंठ कहाँ पर है पृथ्वी पर, किस कौन सा जगह भू वैकुंठ भी कहते हैं, किसको है? तिरुपति। कि भू कहो बा भौम कहो, जैसे वृंदावन मूल वृंदावन है, वहां पर इस भौतिक जगत में जो वृंदावन होता है उसको क्या कहते हैं, भौम वृंदावन जैसे कहते हैं, ऐसे भू वैकुंठ भी कहते हैं। तिरुपति कई जगह को जहाँ पर भगवान विष्णु की विशेष धाम है लोग उसको भू वैकुंठ कहते हैं। जैसे वहाँ भी उड़ुपी में भी इधर पंढरपुर में जहाँ पर विठल जी हैं, तो कभी ऐसे जगह जहाँ पर भगवान विष्णु की धाम है उसको भी कहते हैं भू वैकुंठ है। अब भू स्वर्ग जहाँ पर ऐसे धरा पर स्वर्गों के समान ऐश्वर्य प्राप्त रहता है जैसे भोग विलास के बारे में वर्णन यहाँ पर की गई है, उसको भी भूस्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग का अर्थ जहाँ पर संपूर्ण सभी प्रकार की इंद्रिय भोग की साधनाएं उपलब्ध होता है, इंद्रिय भोग के सारे जैसे यहाँ पर वर्णन की गई है, कितने सुंदर परिवेश है वहाँ पर, सुंदर तालाब, स्वच्छ पानी रहता है, बाजू में ऐसा बहुत सुंदर गार्डन होता है, फूल की बागान होता है, उसमें भैंस सब गुंजार करते हैं, उसके मधु चूसते हैं, तो मतवाला होकर वो घूमते हैं वहाँ पर, सारस, हंस, बतख आदि पक्षियाँ जल में खेलते रहते हैं, आनंद लेते हैं। उस परिवेश में फिर तो जो देवताओं की जब पत्नियाँ अपने पतियों के साथ हास परिहास करती है, और उन्हें कामेच्छा पूर्ण बांकी चितवन में देखती हैं, क्योंकि वहाँ की स्त्रियाँ हमारे जैसे भौतिक जगत में स्त्रियाँ जैसे बुढ़े नहीं होते जल्दी, स्वर्ग में हमारे जो चार कमियाँ है, जो चारों चीज़ हमें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनमें से स्वर्ग में इनको जो आहार मिलता है हमारा आहार की तुलना में उनके आहार बहुत उन्नत हैं। वहाँ तो जूस की नदियाँ भी बहती है, हम तो जूस खरीदने के लिए पड़ता है, जूस जगह पैसा नहीं खरीदने, तो वो जूस की नदियाँ पड़ता है, उसको देखते भी नहीं हुए हैं। वहाँ खाना इतनी उन्नत स्तर के खाना मिलता है, अमृत पान करते जो अमृत पान करते तो फिर जूस क्या पीते, और सोमरस पान करके वो रोग व्याधि से मुक्त हो जाते हैं, इनको किसी प्रकार की रोग व्याधि होता नहीं है, उनको बुढ़ापा नहीं आता है, केवल उनको मृत्यु का भय होता है, शरीर तो त्यागेंगे एक दिन, केवल उनको एक भय रहता है राक्षस लोग को भी आक्रमण कर लेगा, कभी राक्षस आक्रमण करेंगे और उनको क्षत विक्षत हो जाएगा शरीर को थोड़ा, तो उससे भय रहता है और मृत्यु से भय करते, लेकिन इनको रोग व्याधि का भय नहीं होता है, उनके शरीर सदा जवान बने रहता है, इसलिए बहुत दीर्घ समय तक भोग विलास में लगे रहते, इसको भोगोलोक भी कहते हैं, वहाँ भोग करने, ये कर्मलोक है जैसे कहा गया भौतिक जगत भाई, पृथ्वी लोक भारतवर्ष एक कर्मलोक है, और वहाँ वो कौन सा लोक है, भोगलोक है, स्वर्ग में भोग कर सकते हैं जितने आपको भोग चाहिए है, इसलिए वहाँ अमृत पान करके ही लोग निरोग रहते हैं। आगे श्लोक में कहते कि उन लोगों में ऐसा ही लोग सुखी रहते हैं जैसे रामचंद्र जी के शासन में लोग सुखी थे, रामचंद्र के लोक में इसी तरह आप जब भी भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं शासन करते थे अब अयोध्या में, तो अयोध्यापुरी की जो परिवेश वो भी कैसे था, वैकुंठ के समान था, भगवान स्वयं शासन करते थे, नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोको भयाक्लम मृत्यु अनिच्छता मनास्ति राम राजानी अधोक्ष, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राम राज्य में ऐसा उत्तर ये नहीं था, त्रिताप क्लेश को लोग नहीं भुगते थे, ना अधिदैविक अधिभौतिक अधिदैव ने आध्यात्मिक क्लेश लोग नहीं भुगते थे, जरा अधि व्याधि है रोग व्याधि नहीं होता था, जरा वृद्धा नहीं होते थे लोग, किसी प्रकार की ग्लानी अवशोष नहीं करते थे लोग, कोई चिंता नहीं रहता था, दुख शोक भयाक्लम है दुख सुख भय इसी प्रकार किसी प्रकार ये सब समस्या नहीं था प्रजाओं की रामचंद्र जी के राज्य में, यहाँ तक कि मृत्यु अनिच्छता मनास्ती इच्छा नहीं करने से लोग मरता भी नहीं था, इच्छा करेगा तो मृत्यु होगा, जमराज की हिम्मत नहीं रामराज से आके किसको उठा ले जाए, जमराज राम राज्य में प्रवेश करके इसको हटाना उठा लेना उसकी हिम्मत नहीं है, भगवान रामचंद्र जहाँ पर शासन करते थे। कभी कभी कहा जाता अगला श्लोक कि स्वर्ग में रहने वाले जो निवासियों को ऐसा ही सुख मिलता है जैसे यहाँ पर वर्णन की गई है, लेकिन सभी देवताएं और उनके पत्नियां पर उनके सेवक सदैव चंदन और पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार ये भारतवर्ष को छोड़कर अन्य जो 8 स्वर्गीय वर्ष के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। कर्मकांड वेद की 3 विभाग ने के परा 90% इसी की वर्णन करता है, कैसे स्वर्ग में जाओगे, क्या करने से कैसे पहुंचोगे, कर्मकांड इसी कहते कर्मकांड विभाग में केवल यही वर्णन आता है, ये यज्ञ करो ये मिल जाएगा, आप स्वर्ग में कैसे जाओगे उसके भी सारे रास्ता कहा गया है। स्वर्ग का भोग इच्छा को त्यागने से फिर आगे बढ़ोगे, फिर वैकुंठ जगत में जाने के लिए इच्छा प्रकट करोगे, लेकिन ऐसे जैसे हमें ऐसे ही वृंदावन में है, तो वृंदावन में जो निवासी है तो उनसे ऊर्ध्व में है कि मैंने आप स्वर्ग में जाए, स्वर्ग से निवासियों से ऊर्ध्व में है कि ना थोड़ा नीचे है, आपको भी स्वर्ग जाना जरूरी है हैं? नहीं, एक अमृत का कलशा लाकर यहां रख दिया जाएगा हैं? बोलेगा ये अमृत का कलश, जैसे धनवंतरी पकड़ हो गए तो समुद्र के बीच से अमृत का कलश लेकर क्या हो गया, तो यहां अमृत कलश बोलेगा देखो ये अमृत का कलश है, जो ये कलश अमृत जो पान कर लेगा ना इसके शरीर में किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, सुखी बड़े हैं प्रसन्नता, तो क्या करोगे हैं? फास्ट कम फास्ट मिलेगा, फास्ट कम फास्ट चांस, खाली कहते ही आप इधर इधर को मुख करके बैठोगे, भागवत से थे चिन्ह के अमृत है, अमृत पी लेगा तो किसी रोग व्याधि कुछ नहीं करता है, तो फिर क्या करोगे हैं? लेकिन ऐसे परिवेश जैसे यहां पर वर्णन की गई है स्वर्ग के परिवेश के साथ, तो ऐसा परिवेश वृंदावन जैसे स्वर्गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य कहते वृंदावन की जो गोस्वामी लोग ऐसे वृंदावन में थे परिवेश कैसे था, कुज्जत कोकिल हंस सारस गण किर्ण मयूरा कुले नाना रत्न निबद्ध मूल बिटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महानिसंप्रभजत जीवार्थ उदौ जौ मुदा वंदे रूप सनातन रघुजुगौ श्री जीव गोपालक मैं श्री रूप सनातनादि इन छह को स्वामी की वंदना करता हूं कि जो कलरव करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूर के स्वर से आकुल था अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीवन मात्र के लिए हर्षपूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ को वितरण करने वाले थे कौन गोस्वामी लोग। तो जैसे ही स्वर्गों की परिवेश वर्णन की गई ऐसा परिवेश वृंदावन में भी है लेकिन वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे परिवेश होते हुए वृंदावन के निवासी की मन में कामेच्छा के बदल में भगवान राधा कृष्ण की सेवाओं की इच्छा परिपूर्ण रहती है, ये फर्क है। यहाँ स्वर्ग में ऐसे परिवेश होते हुए यहाँ वर्णन की गई कि जो स्वर्ग के जो स्त्रियां है कामेच्छा से पूरित होकर बांके चितवन में किनको देखते हैं, इनके पतियों को बा पुरुषों की तरफ देखते हैं, तो पुरुष लोक में उत्तेजित होते हैं, फिर वो भोग लोक भोग में केवल इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं। लेकिन वृंदावन में जब ऐसे परिवेश होता है उसी प्रकार परिवेश होने पर भी जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी थे परिवेश और मोहक था हैं, यहाँ पर प्रत्येक ऋतु भगवान की इच्छा के अनुसार ऋतुओं की संचार होता था, ऐसा नहीं कि हैं ग्रीष्म ऋतु में भी शरद भी आता था वसंत ऋतु भी आ जाता था भगवान की इच्छा जब वो रास रचाना जो जैसे करना, लेकिन ऐसे ही मोहक परिवेश में रहते हुए भी वृंदावन के जो निवासी है कभी उनके मन में कामेच्छाएं प्रकट नहीं होता है हैं, उनके मन में आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा नहीं होता है, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे का ही काम और कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं, यही फर्क है वैकुंठ के निवासी और वृंदावन के निवासी और स्वर्गों के निवासी में। स्वयं परिवेश यदि ऐसे वहां इतनी और इससे भी स्वर्ग से भी अधिक इंद्रिय भोग की सारे परिवेश होने के तीसरे स्कंद में वैकुंठ की परिवेश वैकुंठ लोक का कैसे लोग निवासी कैसे रहते हैं वहां का ऐश्वर्य जी वर्णन थोड़ा सा दी गई थी उसमें आप पढ़े हैं वैकुंठ में निवासी कैसे रहते हैं। वैकुंठ में रहने वाले प्रत्येक निवासियों के पास में एक एक प्लेन रहता है, एरोप्लेन रहता है और जिसमें बैठते तो इच्छा मतलब उसमें आपको कुछ ईंधन डालने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डालना बग नहीं, वो अपनी इच्छा से आप खाली इच्छा करो कहाँ जाना चाहते आपको पहुंचा देगा उधर एक सेकंड में है। इतनी सारे भोग विलास रहने पर भी वैकुंठ जगत में भाई वृंदावन में लेकिन उनकी मन में कामेच्छाएं प्रकट नहीं होता है, उनकी मन में केवल भगवान श्री कृष्ण की वहाँ विष्णु की भगवान नारायण की सेवा की मन अभिलाषा रहता है। लेकिन स्वर्ग में जब ऐसे ही थोड़ा सा परिवेश आ गया तो उनकी स्त्रियां फिर मोह का मैंने अपने पुरुषों को मोहित करने के लिए बांके चित्त मन में देखते हैं, अमृत पी के बड़ा मतवाला होते हैं, फिर काम अपने कामेच्छा को पूर्ण करने में उसी में लगे जाते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको भोग लोग कहते हैं है? लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्णन की जा रही कि स्वर्गों की निवासियों की चेतना मृत्यु की निवासियों की चेतना से ऊर्ध्व है। इनकी यदि वो इतनी भोग विलास रहने पर भी फिर ऐसे नहीं कि पूरे पूरे भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भी याद रखते हैं है? विशेष रूप में जो राक्षस का आक्रमण करते हैं तो भागते हैं किसके पास, भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं। देखिए राक्षसों के राक्षसों और देवता में ही अंतर है, राक्षस लोग को कहीं आक्रमण कर कुछ होगा तो अपने बाहुबल में विश्वास रखते हैं, अन्य देवताओं के पास जाते लेकिन विष्णु के पास में शरण में नहीं जाते हैं है? लेकिन स्वर्ग के निवासी देवता लोग ने विपदग्रस्त होने पर किसकी सहायता मांगते हैं, वो जानते भगवान विष्णु ही ये समस्त सभी कारण के कारण है, और इनसे ये ही प्रकृत में इनसे ही विश्व ब्रह्मा और शिव आदि सब इनसे ही विस्तारित हुए हैं, ये बात उनको पता रहता है, इसलिए वो भगवान विष्णु को ही स्मरण करते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से जाकर खीर सागर के किनारे भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं है? लेकिन ये मर्त्य के निवासी जो स्वर्गों के निवासी को इसलिए थोड़ा उच्च कहा गया क्योंकि स्वर्गों के निवासी मर्त्य के निवासी जब विपदग्रस्त होते हैं फिर 33 कोटि देवता है इधर उधर भागते हैं है? उस सभी निवासी भगवान विष्णु की शरण में नहीं जाते हैं हाँ, कुछ लोग जाता है किसके पास, शंकर जी के पास, कुछ लोग जाता है देवी के पास, कुछ लोग जाते हैं शनिश्चर के पास, कोई सूर्य के पास जाता है, कोई गणेश के पास जाता है, अलग अलग देवता के पास भागते हैं। मर्त्यवासियों की चिंतन व इनके जो केंद्र वस्तु भगवान विष्णु नहीं होते हमेशा, जो भक्त है वो अपने चेतना को भगवान के चरण में लगा रखते हैं, नहीं तो साधारण तो जनरल जो मर्त्य निवासी ये सदा भगवान विष्णु को स्मरण नहीं कर पाते। लेकिन देवताओं की जो स्मरण करने की वस्तु किसी समय में विपदग्रस्त होने से भगवान विष्णु को ही स्मरण करते हैं, इसी दृष्टि से इनको उन्नत कहा गया, मर्त्यवासियों से ऊपर में है, उनकी चेतना थोड़ा ऊपर में है हैं। और स्वर्ग की भोग विलास यदि मर्त्यवासियों को मिलेगा मर्त्यवासियों की स्थिति और चेतना और नीचे जाएगा है। स्वर्ग की जैसे भोग विलास है ऐसे ही भोग विलास यदि मर्त्य में रहने वाला निवासी को यहाँ मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे। रूपा जी एक तात्पर्य में लिखे हैं, प्रकृति में भूस्वर्ग हम काश्मीर को कहते हैं, ये मर्त्य लोक में भी भारतवर्ष में भी भूस्वर्ग किसको कहते हैं, काश्मीर। काश्मीर जो लोग गए देखे होंगे परिवेश, कहते वहाँ परिवेश बहुत सुंदर है। प्रभुपाद कहते कि स्वर्ग का परिवेश का थोड़ा सा कोई झापसा आइडिया करना है आपको काश्मीर जाना है हैं? काश्मीर भी, काश्मीर को भूस्वर्ग कहते हैं, जिसको कहते भूस्वर्ग है, वहाँ पर बहुत परिवेश बहुत सुंदर, स्वच्छ जल है, झील है हैं, फल फूलों की बागान में भरा हुआ है परिवेश, वहाँ पर भ्रमण बने जैसे यहाँ पर वर्णन की गई ऐसे ही सारे बहुत सुंदर पशु पक्षी कि वातावरण बहुत मोहक है, इसलिए इसको भूस्वर्ग कहते हैं। किसको, काश्मीर। अभी तो बड़ा डेंजर प्लेस बन गया वहाँ जाना है, प्रभुपाद सुनता है क्योंकि अभी तो बहुत आतंकवादी उधर हैं, क्या पाकिस्तान की बॉर्डर है, दोनों क्लेम करते हैं, इसीलिए भूस्वर्ग होने के कारण भारत कहता है काश्मीर हमारा और पाकिस्तान भी कहता है काश्मीर हमारा, लड़ाई चलता है काश्मीर के लिए। काश्मीर काश्मीर से ही सुबह आता है अंगूर वगैरह, अंगूर फल सब संतरा बहुत प्रकार के फल, बहुत सुंदर फल फूल वहाँ, बहुत बागान, बहुत बड़े बड़े बागान वहाँ पर होता है, इसलिए इसको भूस्वर्ग कहते हैं हैं। लेकिन भूस्वर्ग होने से वहाँ का निवासी ऐसे कामेच्छा से मुक्त नहीं रहते हैं, सब इंद्रिय भोग में लगे जाते हैं। साधारण लोग सब हनीमून बनाने के लिए जाते हैं, कहाँ शादी हो गया ना बोले हनीमून मनाने के लिए जाएंगे किसी हिल स्टेशन में हैं। नैनीताल, नैनीताल की परिवेश बहुत अच्छा है, नैनीताल में हो सकता है सुंदर झील है, पहाड़ है चारों साइड में है, सब वातावरण है ना, इसीलिए कहते हैं वातावरण देखकर व्यक्तियों की कामेच्छा और ज़्यादा उत्तेजित होता है, लोग जाते हैं इसलिए हैं। स्वर्ग में विशेष भोग लोग हैं और ये कर्म लोग, मैं कहा कि 8 वर्ष जो है ये इसमें से इलावृत वर्ष, तो इसमें 8 वर्ष में से भारतवर्ष को कर्मभूमि कहा गया और जो 8 लोक हैं ये सब ऊर्ध्व लोक में हैं और ये भोग लोक हैं, यहाँ पर सब इंद्रिय तृप्ति का सारे साधन आपको प्राप्त हैं। जो इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है तो फिर भारत भूमि में है तो आपको फिर क्या करना चाहिए, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं भोग करने के लिए, किसको इंद्रिय तत्व की इच्छा है? स्वर्गलोक में बहुत भोग का इच्छा है, बहुत सुविधा है, वहां पर इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है और स्त्रियां बहुत सुंदर होते हैं वहां पर। तो कहते कि स्वर्गों की स्त्रियां जो मरते लोग की स्त्रियों को देखते हैं कहते कि ये तो सूर्य जैसे देख रहे हैं, बंदरी बंदरी जैसे उनको लगता है, वो इतनी इतनी अच्छे सुंदर होते अप्सराएं हैं, हेवेनली डेनिजन कहते ना, हेवेनली डेनिजन स्वर्गों के अप्सराएं हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो उनको ऊपर जिसको स्वर्ग ऐसे भोगने की इच्छा रहता तो स्वर्ग जाने की इच्छा है होता है, स्वर्ग में जाकर कर्मकांड करके ही यज्ञ आदि करके स्वर्गों के निवासी बनने के योग्य बन जाता कोई है, देवताओं को प्रसन्न करने से देवता लोग ने फिर इसको अलाउ कर देते, इंद्र अलाउ कर देता, हो ठीक है इतने साल रह सकते हैं उधर, लेकिन खीणे पुण्य मरते लोकन विसंती, पुण्य कर्म करके ही कर्मकांड के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते स्वर्ग को। जैसे कोई स्वर्ग जाने के लिए कितना लोग चाहते जानना चाहते, कोई कोई नहीं, अंदर से इच्छा होने पर भी बाहर से मना करना पड़ेगा, ठीक है, अरे भगवान ऐसे लोग फंस जाते ना इसी में, क्यों भगवान, भगवान जैसे ऐसे ही है, भगवान प्राप्त करना बहुत आसान है, कोई व्यक्ति जैसे कहते हैं ना कोई बड़े आदमी से एक बहुत बड़ा सुंदर परिवेश बनाया है, गार्डन बहुत सुंदर, गार्डन के बीच में लास्ट में बैठा वो व्यक्ति, कहा कि सुबह से यहाँ से निकालो, शाम तक यदि मुझे कोई पहुँचा मेरे पास पहुँच जाएगा, हाँ मेरे जितनी संपत्ति है सभी का अधिकारी वही बनेगा, हैं तो बोला ठीक है, लेकिन यहाँ से जो रखा है फर्स्ट जो घुस गया गेट में, फर्स्ट देखा कि संतरा है, अंगूर से झूल रहे हैं, इतनी सुंदर गार्डन है, इतने फल फूल, अब फले भर, अरे खाने लगता खोला थोड़ी थोड़ी खाता है, खाते खाते घोलो आपने कपड़ा लेके बांध लेता है कुछ है, अरे थोड़ा है ऐसे टाइम कुछ बिता दिया उधर, बहुत मुश्किल से फिर आगे बढ़ा है, फिर देखा कि और तो सुंदर जगह है, वो आगे गया तो फिर और भी इससे भी मोहक और परिवेश है, वहाँ तो हंस मयूर आदि खेलते हैं, कितने सुंदर हैं, हैं वहाँ भी थोड़ा घूमते घूमते देखते देखते टाइम बीता, फिर दूसरे आगे चला गया, फिर देखा कि वहाँ तो सब क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ क्रिकेट ही प्रेमी है तो वहाँ बैठ गया, अरे क्रिकेट मैच चल रहा है देखो बस, मैं तो टाइम बिता दिया उधर, तो वहाँ से खुल के आगे गया, कहीं फुटबॉल चल रहा है कहीं क्रिकेट चल रहा है, ऐसे होते तो आगे और गया, वहाँ जाके पहुँच गया, देखा कि अरे स्त्रियां से स्वागत कर रहे हैं, सुंदर स्त्रियां इतनी सुंदर है, अप्सराएं हैं, वेलकम वेलकम कम कम आए बाबू आप लाकर सब आए, कई सुंदर किसी मोहक वस्तु दे रहे पीने के लिए, पियो ये करो, आए वो आपके जैसे यहाँ पर वर्णन है, स्त्रियां बांके चितवन में देखते हैं पुरुषों को, आए काम उत्तेजित रहते काम उत्तेजित रहते, तो फिर वहां गया तो फंस गया उसमें, है ऐसा कोई व्यक्ति है कोई स्त्रियों की प्ररोचना से बच जाता है, बहुत मुश्किल है बचना, अर्जुन के समान कोई शुद्ध भक्त होगा वो उर्वशी का मोह से बच जाएगा, ऐसा नहीं बचना आसान नहीं है, हैं हैं विश्वामित्र जैसे जोगी होने पर भी मेनका का थोड़ा सा घुंघुर शब्द सुना तो बस हो गया है? तो इसलिए ऐसे ही परिवेश को वो घूमते घूमते राजा जब बैठ के वहां वेट कर रहा है, कौन मेरे पास पहुंच रहा है, कोई नहीं पहुंच पाता है, इसमें फंस जाते हैं। तो इसी प्रकार ये स्वर्ग बनाया गया कि प्रतिबंध है हमको कहाँ ले जाने के लिए, भगवत धाम जाने में वैकुंठ जगत में जाने के लिए प्रतिबंध बना हुआ है बीच में, हैं यहाँ इतनी भोग की लालच है, इतनी इंद्रिय तृप्ति के से लालच लगा, क्योंकि हमारे मन में इंद्रिय भोग का इच्छाएं भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पहुँचने में इसलिए ये यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम इसलिए कहते हैं कि जितने चरता उतने भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली और शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भोग करने वाला इच्छा स्वर्ग में फंस गया और जो सिद्धि प्राप्त करने वाला वो आगे सिद्ध लोक आएगा, हैं सिद्ध लोक आएगा सब अच्छे अच्छे सब, हैं फिर वहीं रुक जाते, उसी लालस में रहकर कहीं ना कहीं रुक जाते, ब्रह्म लोक तक है रुक गया। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम जिसकी मन में भौतिक इच्छाएं संपूर्ण रूप में समाप्त हो चुका है, जो प्रकृति में सत्य को जानता है, तो फिर वह भोग विलास में फंसता नहीं है। मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धे जततान आपि सिद्धानं कश्चित् मान इति तत्त्व, तो भगवान कहे इसलिए है। तो इसलिए कृष्ण भक्त साधा निष्काम होते, उनके मन में भौतिक इच्छाएं होती नहीं है, इसलिए स्वर्गों को भी वो नर्क के समान है देखते हैं, स्वर्गों को देखने से कोई मोहित नहीं होता है। कैवल्य नरकायते, वो एक श्लोक है चैतन्य चंद्रामृत में, प्रवधान सरस्वती ठाकुर कहते कि क्या है, कैवल्य नरक आयते आकाश पुष्पायते हैं स्वर्गो स्वर्गो जो स्वर्गो लोग जो प्राप्ति जैसे यहाँ कह रहा है, ये स्वर्गो लोग का प्राप्ति कैसे दिखाई पड़ता है, आकाश पुष्प की तरफ है, आकाश में जैसे कहेगा कोई फूल झूल रहा है अपने आप आकाश पुष्पायते दुर्दांत कालपट इंद्रिया कैसे हैं कालपटली प्रख्यात दंष्ट्रायते हैं विधि महेंद्रादि किटायते कृष्ण भक्त के लिए विधि महेंद्र का जो स्वर्ग इंद्र का पद और माने ब्रह्मा आदि का पद ये तो तुच्छ है लगता है किटायते हैं जिसको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में मन जिसके लग गया है भगवान के चरण कमल में तो ये सबको तुच्छ समझता है ये स्वर्ग में क्या जाएगा तो उनको यदि स्वर्ग के मालिक बना जाए तो अभी इंद्र का पद को भी तुच्छ समझता है। इसी प्रकार हमें भक्ति जो करने आए हैं भक्ति समय भक्ति करने भक्तों को कभी भी मन में ये अभिलाषा नहीं होना चाहिए है स्वर्ग प्राप्ति करने का और आ जाएगा ना इंद्रिय तृप्ति के भोग प्राप्त करना। इसलिए भक्ति का अर्थ है कि अन्य अभिलाषा शून्य अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम भक्ति उत्तम भक्ति हमारे मन में शब्द माने इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं होना चाहिए जब पुण्य कर्म करके इंद्रिय तृप्ति की इच्छा माने को प्राप्त करने की भावना नहीं होना चाहिए स्वर्ग आदि जाने की भावना बा मुख्य ब्रह्म साजुज्य मुक्ति प्राप्त करना लीन हो जाना ये भी इच्छा नहीं होना चाहिए ज्ञान कर्म से मुक्त होना चाहिए अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा की भावना को सदा अपनाना चाहिए अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलन है चाहे किसी भी भाव से दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य आदि किसी भी अनुकूल भाव को अपनाकर भगवान की सेवा में तल्लीन रहना चाहिए ये भक्तों की इच्छा है। इसीलिए गोस्वामी लोग जब थे वृंदावन में श्रीनिवास आचार्य कहते कि वहाँ भी ऐसे ही परिवेश था यहाँ भी मयूर सारस पक्षे मन हंस आदि ये घूम रहे थे सुंदर जल की वातावरण समय था जमुना पूरे बहती थी पूरे फूल थी जमुना है अभी थोड़ा भर गया पूरे साल भर जमुना बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण जब वो यहाँ पर उपस्थित रहते परिवेश भी ऐसे ही था लेकिन फिर भी यहाँ के निवासी को ही काम उत्तेजना में मोहित नहीं होते थे सभी लोग का केंद्र वस्तु कौन था कृष्ण है भगवान की बांसुरी सुनने पर और दूसरे किसी के साथ किसी की प्रति वो मोहित नहीं होते थे चाहे पुरुष के शरीर में हो स्त्री के शरीर में है कोई भी व्यक्ति वृंदावन के निवासी सभी के केंद्र वस्तु चिंतन वस्तु कौन थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये परिवेश को हम प्राप्त करना चाहिए ऐसे स्वर्ग का वर्णन आ रहा है लेकिन स्वर्ग प्राप्त करना कृष्ण भक्तों की इच्छा नहीं होती कृष्ण भक्त नहीं चाहते स्वर्ग में जाना स्वर्ग जी क्या करें कृष्ण भक्तों की एक ही कामना होता कैसे भगवान के धाम में जाएंगे भगवान की सेवा में तल्लीन रहेंगे हैं भक्ति में जो सुख है ये सुख इसी इंद्रिय भोग से प्राप्त नहीं होगा है इंद्रिय भक्ति का अर्थ ही ऋषि कहना ऋषि कैसा सेवन हम भक्ति उचित है हमारे समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने से जो हमें आनंद प्राप्त होती है ऐसे हमारा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है जो प्रयास सुंदर स्त्रियों की सुंदरता और उनकी मोहक वाणी उनकी चितवा उनकी चाहनी ये समय मोहित होकर यदि उनके पीछे वो हम सोचे कि ये सुख है ये प्रकृति में सुख नहीं है ये असली सुख नहीं है देख रहा सुख जैसे लेकिन अंतिम में मिलेगा क्या दुख है इसलिए हमें भक्ति करके कैसे भगवत धाम जाना उसके लिए यदि यहाँ स्वर्गों की वर्णन की जा रही है लेकिन स्वर्गों की ऐसे भोग विलास के जो चातुरी यहाँ पर वर्णन की उसी में मोहित होकर हम स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना चाहिए हमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए कहाँ जाना है वैकुंठ जगत में जदगत्वा न निवर्तन्ति तद धाम परम उस परम धाम को जाकर फिर जन्म मुक्ति संसार से सब दिन के लिए मुक्त हो जाना चाहिए नहीं तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर् आवर्तिन अर्जुन माँ में उपेतु कमते पुनर्जन्म न भी देते चाहे भोग विलास मिल जाए थोड़ा दीर्घ समय आपका परमय बढ़ जाए लेकिन आपको तो फिर अंत में शरीर को त्याग कर आना पड़ेगा है क्षणपूर्ण नहीं मरते लोगन विसंती। इसलिए ये क्षणिक सुख के पीछे क्यों हम फंसे, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही भगवत धाम जाना, ये हमारे जीवन के उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। वही प्रश्न है, दो मिनट बचा है, प्रश्न किसके? सकाम भक्त है, स्वर्गवासियों को क्या कहते हैं? सकाम भक्त। भक्ति करेंगे लेकिन थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए है? भगवान की भक्ति करके इंद्रिय सुख मांगते हैं, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख यदि बाधा आएगा तो फिर वो है, जब इंद्रिय सुख होता तो भोग में कोई भगवान को इतना चिंतन करना आसान नहीं होता है। इंद्र ने भी रुक दिया, किसको? भगवान जब गए थे सत्यभामा को लेकर, सत्यभामा कहा कि मुझे एक पारिजात पुष्प चाहिए। अच्छा, भगवान ने तोड़ने के लिए गए पारिजात पुष्प, वही इंद्र मना गए नहीं नहीं तोड़ सकते है? भूल जाते भगवान को, कभी कभी भूल जाते हैं लोग, अत्यधिक इंद्रिय सुख होने से भगवान को भूल जाने का संभावना रहता है। लोग सकाम भक्त हैं, अभी उनका जो इंद्रिय भोग कोई बाधा आ जाता है, फिर भगवान को भक्ति करके इंद्रिय भोग का भोगने के लिए ही स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते, स्वर्ग में ही रहना चाहते। इतनी भोग है उनके मन में, भगवत प्राप्ति करने की इच्छा होता नहीं, वो यहीं रह के अच्छा स्वर्ग में रहना ही सदा, बोले ये कौन छोड़ के जाएगा इसको, इतनी अच्छा है। इसलिए कहे कि भारत भूमि में ही ये जंक्शन है, यहीं से जाओगे, यहीं से भगवत धाम जा सकते आसान से है, यहीं से आप कहीं भी भक्ति करके भगवत धाम जाना आसान है। स्वर्ग में रहकर भक्ति करके भगवत धाम जाना इतने आसान, इतनी भोग विलास है उनकी इच्छा ही नहीं होता है भगवत धाम, बोले वो एक ही चीज है, वो हाँ बस यहीं ठीक है। इसलिए स्वर्ग के जाने की इच्छा है नहीं, स्वर्ग वैसे कभी कभी सोचते हैं हमारे जन्म ही भारतवर्ष में हो जाएगा तो अच्छा है, ये पुण्य भूमि भारत में यदि हमारा जन्म हो जाए फिर हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सके। स्वर्ग आए वहां प्रचार करोगे, स्वर्ग में जाएंगे प्रचार करोगे, देवता लोग सुनेंगे आपका, वहां भोग लोग है, इसको भोग लोग, आपको भोग करना है तो जाओ, प्रचार करना ही करो, स्वर्ग में आपका प्रचार कहीं सुनने वाला नहीं, यही प्रचार करना है, वहां सुनेंगे यदि आप ना देवर्षि, इसलिए वहां प्रचार करने के लिए क्वालिफाइड है नारद जी, इनको इसलिए कहे क्या कहते हैं देवऋषि, ये देवताओं को प्रचार कर सकते हैं, देवता उनको मानते हैं, देवर्षि नारद है, कई देवर्षि है, देवताओं में भी ऋषि कुछ है, तो देवताओं की ऋषियों को देवता लोग सुनेंगे है? तो नारद जैसे महान ऋषि है उनको सुनते हैं, इंद्र भी सुनता, देवता लोग को सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नारद जी लोग के इतने शुद्ध भक्ति प्रचिक नहीं करते, जानते कि ये लोग सुनने वाले नहीं, शुद्ध भक्ति करने वाले नहीं, वो भोग विलास में इतनी लगे रहते हैं, शुद्ध भक्ति कोई यदि थोड़ा सा कहीं इंद्र का पोस्ट चले जाएगा, इंद्र को पता लगा तो फिर वो सभी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कौन इंद्र है? कोई मरते लोग में यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, अब वो बोलता नहीं अश्वमेध यज्ञ करेगा तो मेरा पोस्ट ले लेगा, है किसी को भी नहीं देगा 100 अश्वमेध यज्ञ करने, बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब भोग विलास के पीछे फंसे रहते हैं। मैंने मर्त्य लोक में अच्छा है, कुंती महारानी कहते कि और ज्यादा हमको दुख दो प्रभु, हाँ विपद संतु ही तत्र तत्र जगत गुरु, आपको ज्यादा विपद दो, विपद में ज्यादा हम आपको स्मरण करेंगे हैं, दुख में दुख में स्मरण सब करे, सुख के सुख में करे ना कोई, सुख में स्मरण यदि करे दुख कहा के, सुख में भूल जाते ना भगवान स्मरण करना। हरे कृष्ण। प्रसाद ले लो थोड़ा थोड़ा।